गोपी जन वल्लभ गिरिवर धार, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धार, जसोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जसोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जसोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारि, जमुना तीरावन चारि, जय राधा माधव कुंज बिहारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जसोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जसोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारि, जमुना तीरावन चारि, जय राधा माधव कुंज बिहारे, 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि से वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगामय की जमुनामय की भक्ति देवी की कृष्ण भक्ति प्रणायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम प्रियां वल्गु विचित्र जल्पै ससांत्वयित्वा अच्युत मित्र सूतः अन्वाद्रवद्दंशित उग्र धन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन इति इस तरह प्रियाम प्रियतमा को वल्गु मीठे विचित्र तरह तरह के जलपय कथनों द्वारा सह वह सांत्वयित्वा सांत्वना देकर प्रसन्न करके अच्युत मित्र सूतः अर्जुन ने जिसका मार्गदर्शन अच्युत भगवान मित्र तथा सारथी के रूप में करते हैं अन्वाद्रवत पीछा किया दमशितः कवच द्वारा सुरक्षित उग्र धन्वा भयानक अस्त्रों से सज्जित कपिध्वज अर्जुन गुरुपुत्रम अपने गुरु के पुत्र को रथेन रथ पर आरूढ़ होकर अनुवाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा इस प्रकार मित्र तथा सारथी रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को मीठे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। श्लोक क्रमांक 18। तमापतंतम सविलक्ष्य द्वौरात कुमारतो द्विग्न मनारथेन पराद्रवत प्राण परिप्सुवार्य यद्वागमं रुद्र भयाद यथा कह। अनुवाद और तात्पर्य। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते देख अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भागा जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तात्पर्य। पाठ के अनुसार कह या अर्क के दो संदर्भ पुराणों में मिलते हैं। कह का अर्थ है ब्रह्मा, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया, जिससे शिवजी कुपित हुए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण किया था। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भागे थे। जहां तक अर्कह का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विंध्युन माली नाम का एक असुर था, जिसके पास चमचमाता सुनहलता वायुवान था, जो सूर्य के पीछे तक यात्रा कर सकता था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इससे सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुवान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हुए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम इस प्रकार मित्र तथा सारथी रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को मीठे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। श्रील व्यासदेव नारद मुनि से श्रवण करने के पश्चात अब इस अध्याय में वो भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान के विषय में लिख रहे हैं और सुत गोस्वामी उसी को शौनक आदि ऋषिगण को सुना रहे हैं। और इस अध्याय की शुरुआत हुई है जब सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को कह रहे हैं कि अब मैं कृष्ण कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। और यहां पर देखिए कृष्ण कथा वो प्रारंभ कर रहे हैं महाभारत के एक प्रसंग को लेकर। इस अध्याय का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। अब यदि हमें कोई व्यक्ति ये पूछे कि भागवत में कृष्ण कथा कहां पर है तो ज्यादातर हम क्या कहते हैं, दशम स्कंद में। और यहां पर यदि कोई पूछे कि ये जो अध्याय है जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड, क्या इसमें कृष्ण कथा है, तो ये अध्याय का शीर्षक पढ़ते हुए हम कहेंगे कि कोई संशय होगा हमें कि इसमें तो द्रोण पुत्र को दंड दिया गया है तो इसमें कृष्ण कथा कहां। यहां पर शुरुआत कृष्ण कथा की हो रही है इस अध्याय से। हालांकि पूरा श्रीमद् भागवतम कृष्ण कथा ही है और श्री प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तविक कृष्ण कथा क्या है। दो प्रकार की कृष्ण कथा होती है, कोई बता सकता है कौन सी है दो प्रकार की कृष्ण कथा? हाँ, एक डायरेक्ट कृष्ण की और एक भक्तों की, तो वो इनडायरेक्ट हो गया क्या? हाँ, एक है जो कृष्ण ने उपदेश दिए, जैसे भगवद गीता, वो भी कृष्ण कथा है। और एक जो कृष्ण के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है उसे भी कृष्ण कथा कहते हैं। तो ज्यादातर भारत में जब लोग भागवत सप्ताह करते हैं तो भागवत में भी सीधे दशम स्कंद में पहुंच जाते हैं और दशम स्कंद में रास पंचक, उनके अनुसार कृष्ण कथा केवल जो भगवान ने रास लीला की वही कृष्ण कथा है। तो वे वास्तविक रूप में कृष्ण कथा नहीं सुना रहे बल्कि अपनी व्यथा सुना रहे, स्वयं के हृदय में जो काम है बस उसे ये कह देना कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे कैसे समझा जाए, और क्योंकि लोगों को उसके विषय में ये ज्ञान नहीं दिया जाता कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उनके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं है, तो भगवान जब ये सारी लीलाएं करते हैं तो वो केवल शुद्ध प्रेम के स्तर पर होती है। तो क्योंकि ये समझाया नहीं जाता तो जो श्रोता हैं वो ये समझते हैं कि ठीक है, हमारी जो काम वासना चल रही है वो भी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि यदि यहां पर ये भगवान कृष्ण ये इन लीलाओं में मग्न हैं तो हमें भी अपनी लीलाओं में मग्न होना चाहिए। तो जो वक्ता है और जो श्रोता है वो और भ्रम में गिर जाते हैं जब इस प्रकार की तथा कथित कथा सुनते हैं तब। इसलिए प्रभुपाद जी तुरंत तात्पर्य में वो लिखते हैं कि वास्तविक कृष्ण कथा क्या है, और उसकी शुरुआत होती है जब हम कृष्ण के मुखारविंद से सुनते हैं, और वो है भगवद गीता। और महाभारत ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में विशेष रूप से व्यासदेव जी इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं केवल वासुदेव का गुणगान करने के लिए। हालांकि महाभारत जो है वो बहुत रोचक लगता है लोगों को। क्यों रोचक लगता है? क्योंकि उसके अंदर पॉलिटिक्स है, उसके अंदर डिप्लोमेसी, राजनीति और मारकाट और ये सारी जो बातें उसके अंदर हैं, इसीलिए महाभारत सीरियल जब शुरू हुआ था भारत में तो एक टक होकर लोग देखते थे उसे। और मुझे याद है कि उस महाभारत सीरियल में जब वो गीता का एपिसोड शुरू हुआ तो उसमें इतना आनंद नहीं आया लोगों को। कई बार ये प्रतिक्रिया पाई गई लोगों में कि ये इतना, मुझे याद है कि वो गीता का जो सीरियल था उसमें कुछ 3 सीरियल लिया था उन्होंने केवल गीता के ऊपर, भगवान गीता सुना रहे, तो लोगों की प्रतिक्रिया थी कि ये 3 सीरियल और एक एक सीरियल एक एक घंटे का हुआ करता था, ये 3 सीरियल केवल गीता के ऊपर, तो बहुत बोरिंग लग रहा था वो लोगों को। और उसके पश्चात फिर जब मारकाट शुरू हुई, हाँ अब कुछ महाभारत देखने मिल रहा है। और इसीलिए लोग देखिए जब आपस में बात भी करते हैं तो देखिए घर में यदि झगड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, ये क्या महाभारत लगा रखा है। जैसे घर का झगड़ा और जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो युद्ध हुआ था उसमें कोई अंतर नहीं। यदि ये कहें घर पे घर के झगड़े को यदि ये कहें कि क्या महाभारत लगा रखा है, तो उस महाभारत में गीता भी है तो गीता भी होनी चाहिए फिर उस झगड़े के पश्चात या उस झगड़े के पहले। तो क्योंकि हम जानते नहीं कि वास्तविक रूप में व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना किस लिए की, उसे इतना रोमांचक इसलिए बनाया व्यासदेव जी ने ताकि हर एक व्यक्ति, जानते थे कि कलयुग में सभी जो हैं वो शूद्र से भी नीचे हैं। और ये मैंने विशेष रूप से पाश्चात्य देश में देखा कि वहां पर मैं एक प्रोग्राम के लिए गया था और वो प्रोग्राम में इसी विषय के बारे में मुझे कहने कहा था कि इस कलयुग में हमारी स्थिति क्या है, हम कौन से वर्ण में आते हैं। तो जब हम प्रोग्राम के लिए जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक स्त्री अपने कुत्ते को घुमा रही थी सुबह के समय, और उसके हाथ में वो कुत्ता जब मल त्याग करेगा उसे उठाने के लिए एक थैली थी, और उस कुत्ते ने मल त्याग किया और वहीं पर तुरंत, जैसे भारत में हम क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को, भंगी। हालांकि कपड़े ऐसे पहने थे जैसे कोई बहुत लखपति या करोड़पति की कोई वो पत्नी या स्त्री होगी, परंतु जो कार्य कर रही थी वो जैसे कोई व्यक्ति भारत में भंगी का कार्य करता है। परंतु मैंने यही उदाहरण उस प्रोग्राम में दिया कि भंगी जो होता है यदि उसे शूद्र की श्रेणी दी जाए तो ये शूद्र से भी अधम है, क्योंकि भंगी भी कुत्ते का मल नहीं उठाएगा। उसमें भी वो थोड़ा अपना डिस्क्रिमिनेशन रखता है। परंतु यहां पे देखिए, इसलिए कहा गया है कि शूद्र से भी अधम हो रहा है कलयुग में सभी लोग, कि कुत्ते का मल उठा रहे हैं। तो वो जो भक्त मुझे ड्राइव कर रहा था तो भक्त वो कहते ये तो यहां पे कॉमन है। एक जगह पर देखा हमने कि वो पैसे देते हैं लोगों को, कई लोग केवल दूसरों के कुत्तों को चराने ले जाते हैं, नहीं चराने नहीं घुमाने। तो उनको पैसा दिया जाता है, एक कुत्ते का $10। और ऐसे एक व्यक्ति को हमने देखा न्यूयॉर्क में एक पार्क में, वो 10 कुत्तों को एक जगह, एक हाथ में 5 दूसरे हाथ में 5, ऐसे 10 कुत्तों को वो घुमा रहा था। घुमा क्या, वो कुत्ते घुमा रहे थे उसको, वो क्या घुमा रहा था कुत्तों को, वो भगा रहे थे उस व्यक्ति को। और इतनी थैलियां उसके हाथ में, क्योंकि एक भी कुत्ता यदि मल त्याग कर दिया और यदि उसने उठाया नहीं तो सारा फाइन उसके ऊपर लगेगा सरकार आकर। तो मैंने इन भक्त से एक प्रश्न पूछा तो ये भक्त आश्चर्यचकित हो गए उस प्रश्न से, और उन्होंने कहा कि ऐसी समस्या और ऐसा प्रश्न आज तक अमेरिका में किसी ने पूछा नहीं होगा ये कुत्तों के संबंध में। मैंने पूछा कि ये जो ये मल उठाते हैं कुत्तों का, यदि इन कुत्तों को दस्त लग जाए तो जब कुत्ते को दस्त लग जाए तो कैसे उठाएंगे उसको। तो कुछ समय के लिए उस गाड़ी चला रहा था, थोड़ा हिल गया, वो भी सोचने लगा कि मैं कभी सोचा नहीं इस प्रश्न के विषय में। और उसने कहा कि इंटरनेट पे जानकारी निकालनी चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ जानकारी आप निकाल सकते हैं कि जब ऐसी समस्या आती है। तो देखिए, मनुष्य जीवन जो है वो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए है, और लोगों को केवल इसी में अपना जीवन बिता रहे हैं कि ये कुत्तों का मल कैसे उठाया जाए, कितनी अच्छी तरीके से उठाया जाए। तो हो सकता है अगले जीवन में कुत्ते की योनि भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि कुत्ते के विषय में चेतना होती तो यदि हो सकता है कुत्ते की योनि मिल जाती, परंतु कुत्ते के मल के अंदर जो कीड़े होंगे शायद उसकी योनि मिलेगी, केवल उसी में चेतना यदि रही था। तो व्यासदेव जी ने हमारी ये स्थिति देखी, देखो कि आगे चलकर कलयुग में शूद्र से भी अधम ये कलयुग के निवासी रहेंगे। इसलिए इन्हें यदि ये दवा भगवद गीता की दवा, कृष्ण कथा की जो दवा है, इसे यदि ये सारी कथाओं में बांधकर नहीं दिया जाए तो ये कभी भगवद गीता को खोलेंगे नहीं। और इसलिए जो लोग महाभारत पढ़ते हैं उनमें से भी बहुत कम हैं जो महाभारत में भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। महाभारत में वो भगवद गीता तक पढ़ेंगे और भगवद गीता के बाद पढ़ेंगे। एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि ये भगवद गीता में भगवान ने, आप लोग जब प्रवचन देते हो तो आप लोग बीच बीच में थोड़ा स्टोरी बोलते हो, एग्जाम्पल देते हो, थोड़ा कोई जोक वगैरह, परंतु भगवान ने एक भी जोक नहीं मारा। और बीच में कुछ स्टोरी वोरी होना चाहिए था तो थोड़ा रुचिकर लगता पढ़ना भगवद गीता। तो हमने कहा कि हमारा जो पूरा जीवन है इस भौतिक संसार में, ये सबसे बड़ा जोक है। और इसलिए हमें गंभीर बनाने के लिए भगवान ने ये भगवद गीता सुनाई। तो व्यासदेव जी महाभारत के प्रारंभ में वो लिखते हैं कि वासुदेव का गुणगान करने के लिए मैं इस महाभारत की रचना कर रहा हूं। तो जो श्रोता हैं वो पहले ही समझ लें कि महाभारत किस लिए इसकी रचना की गई है, और इसलिए उसे वास्तविक रूप में कृष्ण कथा कहा जाता है। क्योंकि एक दृष्टिकोण से यदि हम केवल कृष्ण की लीलाओं को सुने तो ये नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण के मन में क्या चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति यदि कुछ कार्य में लगा हुआ है तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि उसके कार्यों के वजह से उसके मन में क्या चल रहा है, ये भी हम जान लें उसके कार्यों को देखते हुए। जैसे हो सकता है, हमारा ही उदाहरण लीजिए, हम जब रोज जप करते हैं तो ऐसा लगता होगा कि जप करते समय हम बहुत बड़े साधु प्रतीत होते हों, कि माथे पे तिलक है लंबा चौड़ा और सबसे मोटी कंठी माला खरीदी है वृंदावन से पहनने के लिए, और जो जप माला है वो भी राधा कुंड से सबसे बड़ी वाली माला खरीदी और उसको एक साल तक तेल में डाल के रखा ताकि जब मैं माला को बाहर निकालूं तो जब लोग देखें मेरी माला को तो लगेगा माला माल है, ये व्यक्ति कोई साधारण भक्त नहीं है। तो बाहरी दृष्टिकोण से यदि कोई व्यक्ति हमें देखे जप करते हुए या इस प्रकार से कथा में बैठे हुए या कथा सुनाते हुए प्रवचन देते हुए तो कहेगा बहुत बड़ा साधु लगता है ये, तो उसे ये नहीं पता लगेगा कि मन में क्या चल रहा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा, माथेर तिलक गलेर माला एई कलीर चेला, कि बाहर से सब कुछ है एक साधु के लक्षण, परंतु मन में वो चेला किसका बना हुआ है, कली का चेला बना हुआ है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरे ठाकुर ने भी वो सुंदर भजन रचा, दुष्ट मन तुम्हें किशेर वैष्णव, कि किस प्रकार के वैष्णव हो तुम, क्योंकि वास्तविक रूप में वैष्णवता बाहर से दिखाई जा नहीं जाती बल्कि मन में, वहां से जब शुरू होती है तो वास्तविक रूप में भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो किसी व्यक्ति के बाहर के कार्यों को देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि इसके मन में क्या चल रहा है, परंतु वो व्यक्ति जब शुरू करे बोलना तब पता लगता है कुछ हद तक कि इस व्यक्ति के मन में क्या है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के जो उपदेश हैं हम साधकों के लिए वो ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि इसमें हमें भगवान के मन में क्या है ये पता लग रहा है, क्योंकि भगवान अब कह रहे हैं। और यदि केवल भगवान की लीलाओं को हम देखते रहें और केवल उनके बारे में सुनते रहें बिना किसी विश्लेषण के, तो केवल मन और भ्रमित हो जाएगा। अभी देखिए, मान लीजिए हम भगवान कृष्ण की लीला सुन रहे हैं और भगवान कृष्ण की लीला श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद जी ने सुनाई है, तो उसमें भगवान की लीला में प्रभुपाद जी केवल यदि अनुवाद दिए होते, हमें तात्पर्य नहीं दिए होते, तो हम बिल्कुल भ्रमित हो जाते थे कि भगवान ये रासलीला सबसे पहले करने की जरूरत क्या थी, और ये माखन चोरी, झूठ बोलना, महाभारत में सबसे पहला प्रश्न लोगों का यही होता है। हालांकि खुद के जीवन में हर एक क्षण झूठ का बीत रहा है, परंतु सबसे पहला प्रश्न ये है कि तुम्हारे भगवान ने झूठ क्यों कहा, कपट क्यों किया। और यदि उनके जीवन में पूछा जाए तो अभी अभी किसी को धोखा देके आया होगा व्यक्ति। तो यदि केवल अनुवाद दिया होता प्रभुपाद जी ने, तात्पर्य नहीं दिया होता, तो हम भ्रमित हो जाते थे भगवान की लीला श्रवण करने से। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये सिखा रहे हैं कि भगवान के मन में क्या था जब भगवान ने वो लीला की। भगवान के मन में था कि हमारे मन का काम वासना निकल जाए। तो तात्पर्य बहुत आवश्यक है, और इसीलिए भगवद गीता में भी भगवान जो कुछ कह रहे हैं उसके भी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दिए, ये समझाते हुए कि भगवान के मन में क्या था जब भगवान ने अर्जुन को कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। नहीं तो यदि तात्पर्य नहीं हो तो कई लोग प्रवचन करते हैं, कथाकार प्रवचन करते हैं इनके ऊपर, सर्वधर्मान परित्यज्य, और क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, और कहते हैं संस्कृत में माम का अर्थ है मैं, तो सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। तो इसीलिए तात्पर्य आवश्यक है, इसलिए तुरंत प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं माम का अर्थ है कृष्ण। मन मना भव मद भक्तो, उसका अर्थ है, मद का अर्थ है कृष्ण। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि उस प्रकार की जो कृष्ण कथा है वो हमारे साधना भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। तो यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं कृष्ण कथा की सुत गोस्वामी, इस प्रसंग को लेते हुए जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा गया, अश्वत्थामा ने मारा, बहुत ही नृशंस तरीके से द्रौपदी के 5 पुत्रों को उनका सर धड़ से अलग कर दिया, और यहां तक कि देखिए अश्वत्थामा जो एक ब्राह्मण के पुत्र है और एक ब्रह्मचारी, अश्वत्थामा एक ब्रह्मचारी था और ब्राह्मण का पुत्र, द्रोणाचार्य के पुत्र, कि जब अश्वत्थामा ने इस प्रकार का कार्य किया तो दुर्योधन भी इस कार्य की सहमति नहीं दिया। और यहां पर विशेष रूप से भगवान को इस श्लोक में अच्युत कहा गया है। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जलपय स सांत्वयित्वा अच्युत मित्र सूत। केवल अच्युत नहीं बल्कि अच्युत मित्र सूत कि भगवान जो कि अच्युत हैं कभी अपने पद से च्युत नहीं होते और जो मित्र हैं अर्जुन के या अर्जुन जो इन अच्युत के मित्र हैं। तो देखिए कोई व्यक्ति यदि केवल इस प्रसंग को पढ़े और भगवान और भक्तों के विषय में नहीं जानता है तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि यहां पर अश्वत्थामा ने द्रौपदी जो कि अर्जुन जिसे यहां पर अच्युत मित्र कहा गया है, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पांच पुत्रों को कैसे भगवान ने इस प्रकार से अनुमति दे दी मरने की या मारे जाने की, जब उन्हें अच्युत कहा गया है कि वो अपने पद से कभी च्युत नहीं होते और उनका पद क्या है, भक्त वत्सल, ये उनका पद है। तो उनके पद से कैसे वो च्युत हो गए, कैसे ये पांच जो पुत्र थे द्रौपदी के मारे गए। तो यहां पर तात्पर्य में और आगे इस कथा में आएगी कि कैसे अश्वत्थामा को इस प्रकार का दंड के कारण भगवान, ये जो अश्वत्थामा ने कार्य किया उसके कारण उसे दंडित करना चाहते थे भगवान। क्योंकि अश्वत्थामा हालांकि एक ब्राह्मण, परंतु क्योंकि उसके कार्य इस प्रकार के थे इसीलिए भगवान उसे बहुत विशेष प्रकार से दंड देना चाहते थे। और यहां पर शुरुआत हो गई है कि अब अर्जुन द्रौपदी के सामने वो एक प्रण ले रहे हैं कि जब तक इस अश्वत्थामा का सर मैं नहीं लाता तब तक तुम अपनी आंसुओं को मत पहुंचना। और इस अगले श्लोक में 18 श्लोक में यहां पर अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन वो अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को लेकर अश्वत्थामा को मारने के लिए चल पड़ा है तो डर के मारे वो भाग रहा था, भयभीत होकर भाग रहा था। और प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य वो भय के ऊपर लिख रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया है कि इस भौतिक संसार में ये जो तत्व है भय का तत्व, ये इतने इतने ज्यादा मात्रा में पाया गया है कि हर एक जीवात्मा, एक छोटी सी चींटी यहां तक कि ब्रह्मा जी, जैसे यहां ब्रह्मा जी के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मा जी शिव जी से भयभीत होकर भाग गए थे एक दिन, तो एक छोटी सी चींटी को लेकर या इंद्रगोप को लेकर इंद्र तक, इंद्रगोप सबसे छोटा एक कीड़ा माना गया है, बहुत छोटा कीड़ा होता है इंद्रगोप, उस कीड़े को लेकर इंद्र तक या ब्रह्मा जी तक, सभी संसार में ये जो भय का तत्व है इसके अंदर रहते हैं। इसलिए इस संसार को कहा गया है पवर्ग, और पवर्ग कहते हैं इसमें ये पांच अक्षर हैं, प फ ब भ और म। प का अर्थ है परिश्रम। तो इस भौतिक संसार में क्या कहना इस विषय में, कितना परिश्रम करना पड़ता है। और ये सब कुछ जो परिश्रम व्यक्ति करता है, बद्ध जीवात्मा करता है इस भौतिक संसार में, वो केवल भयभीत है इसलिए करता है। ये जो भय का तत्व है, और भय किस प्रकार का है कि मुझे यदि मैं परिश्रम नहीं करूंगा तो मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा आज। तो इसीलिए लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है, पता नहीं ये पापी शब्द क्यों लगा है इसके सामने, कोई जानता है कि मतलब पाप भी करना पड़े तो ये पेट को भरो। तो परिश्रम करता है बद्ध जीवात्मा और इतना कठोर परिश्रम करता है, परंतु लोगों को लगता है कि देखो ये व्यक्ति कितना उत्तरदायी है, कि कितना अच्छा परिश्रम कर रहा है अपने जीवन में, तो लोग उसका गुणगान करते हैं। और खुद भी व्यक्ति कहता है कि मैं आपके भगवद गीता का कर्म योग का पालन करता हूं, जो भगवान ने कहा है मैं ही व्यक्ति हूं जो पालन कर रहा हूं इस भगवद गीता का, कर्मण्येवाधिकार से पूरे अधिकार से अपना मैं कर्म कर रहा हूं। परंतु वो कर्म किस लिए, यदि वो कर्म नहीं करूंगा तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो कई बार लोग कहते हैं अरे आपके प्रवचन से किसका पेट भरने वाला है, उल्टे आपके प्रवचन से भूख ज्यादा लगती है। इसीलिए हम जो इस समाज में जी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, यही वास्तविक सामाजिक कार्य है। तो व्यक्ति परिश्रम करता है भय के वशीभूत होकर, यदि मैं परिश्रम नहीं करूंगा तो केवल खाना नहीं, बल्कि देखिए खाने के लिए व्यक्ति को इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, बिल्कुल परिश्रम नहीं करना पड़ता खाने के लिए। जैसे ये बाहर इतनी सारी चिड़ियां घूम रही हैं, अब इनके जीवन में यदि हम देखें तो कौन सा इतना कठोर परिश्रम इनको करना पड़ता है रोज खाने के लिए। कोई बहुत चिंता नहीं रहती इनको कि पता नहीं कल क्या मिलेगा, परंतु देखिए मनुष्य समाज में इतनी चिंता है और वो चिंता भय के कारण है। इतनी चिंता है कि कल पता नहीं क्या खाने के लिए होगा कि नहीं, इसलिए फ्रिज में भर के रखो या फिर गोडाउन भरा रहना चाहिए। परंतु यदि इनके जीवन में हम देखें, ये प्राणियों के जीवन में न तो कोई फ्रिज है, न कोई गोडाउन है, न कोई घर है, इनका जो घोंसला होता है वो भी खाली रहता है, खाली घास के तिनकों से भरा रहता है। परंतु व्यक्ति परिश्रम करता है भय के कारण, और किस प्रकार का कितना परिश्रम, कहा गया है कि वो जो प है वो फ में परिवर्तित हो जाता है, और वो फ क्या है, फेन। इतना परिश्रम करता है कि फेन निकलने लगता है, और वो फेन की परिभाषा अलग अलग होती है। पसीना निकल रहा है, कई लोग कहते हैं खून पसीने की कमाई है मेरी, और उसमें गर्व मानते हैं कि ये मकान मैंने अपने खून पसीने से बनाया है। परंतु मृत्यु के समय सारा पसीना सारा खून यदि एकत्रित भी कर लें तो ये मकान जाएगा नहीं तुम्हारे साथ। तो वो खून पसीना क्या है, फेन। जैसे कई बार ये जो बैल होते हैं या ऊंट को भी देखा गया है कि जब बहुत कठिन परिश्रम में ऊंट या ये प्राणी लगे रहते हैं तो उनके मुंह से फेन बाहर निकलता है। और चैतन्य महाप्रभु के मुख से भी फेन निकलता था, परंतु वो दिव्य कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर निकलता था। और कोई व्यक्ति यदि ये पढ़े चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य कर रहे हैं और भाव विभोर होकर उनके मुख से फेन निकल रहा है, तो कोई व्यक्ति कहेगा भाई मेरे मुख से भी निकलता है और आपके चैतन्य महाप्रभु के मुख से भी निकल रहा है, तो उसमें अंतर क्या है। अंतर है कि ये जो फेन निकल रहा है बद्ध जीवात्मा का, वो परिश्रम के कारण है, और परिश्रम है भय के कारण। तो व्यक्ति परिश्रम करता है, इतना परिश्रम करता है कि फेन निकलता है, और फेन निकलने के बाद अगला जो अक्षर है इस पवर्ग का वो है ब, बंधन। कि इतना परिश्रम किया परंतु वो परिश्रम उसे और बंधन में डाल रहा है। अब देखिए एक प्रवचन में राधानाथ महाराज एक सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि ये बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है लोग जब परिश्रम करते हैं तो टाई पहन के परिश्रम करते हैं, गले में वो टाई पहनते हैं। अब उसका कोई कारण नहीं है क्यों पहनते हैं टाई। जैसे एक बार प्रभुपाद जी बॉस्टन में MIT में प्रवचन कर रहे थे, बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी MIT, तो वहां पर प्रभुपाद जी ने इतना गहरा तत्व सुनाया मनुष्य धर्म के विषय में। और उसके बाद एक व्यक्ति MIT का व्यक्ति वो प्रश्न पूछता है, देखिए इनके प्रश्न, ये क्या है आपके माथे पे? देखिए, तो प्रभुपाद जी को लगा कि देखो मैंने इतना मनुष्य जीवन के विषय में सुनाया और इसका प्रश्न केवल है कि ये माथे पे क्या लगा है, ये नहीं कि मैं कैसे इसे अपने जीवन में उतारूं, कैसे मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हूं। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि वो व्यक्ति वो टाई पहने हुए था, तो प्रभुपाद जी ने पूछा ये क्या लटका हुआ है यहां पे। जब उसने पूछा ये क्या है तो प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या है, वो चुप हो गया क्योंकि कोई इसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ था नहीं, क्यों लटकाया हुआ है ये। वो भी देखने लगा, पहली बार समझ में आया उसे कि मुझे भी पता नहीं क्यों मैं पहन रहा हूं इसे। अब वहां विदेश में क्योंकि इतनी ठंडी होती है तो हो सकता है ये कारण हो कि इसे एक कॉलर को बंद करने के लिए यहां पे ये एक गांठ मारी जाती है, वो टाई, वो एक एक प्रकार की वो नाल है, नाल होती है ना, वो बैलों को बांधी जाती है, घोड़े को बांधी जाती है। तो वहां पर विदेश में इतनी ठंडी होती है तो इसलिए हो सकता है कि वो जैसे वो जो कपड़े पहनते हैं, ये जो जीन्स पैंट है, ये जो जीन्स पैंट पहनते हैं वो उसी के लिए कि वहां पर इतनी ठंडी होती है। और ये जो जीन्स पैंट जिसने शुरू की वहां पर, वो व्यक्ति वास्तविक रूप में वो भंगी का कार्य करता था, तो उसके जो पैंट थी वो इतनी पतली थी कि वो पैंट फट जाया करती थी। इतना कचरा उठाना और वो कचरे को उठा उठा के फेंकना, तो उसका उसकी पैंट फट जाया करती थी। तो इसलिए फिर उसे वो पैंट का आविष्कार किया, वो जीन्स पैंट का, कि एक तो ठंड है और इतना ये कचरा उठाना पड़ता है, भंगी का कार्य करना पड़ता है, तो इसलिए ये जो जीन्स पैंट है ये बिल्कुल खराब नहीं होती, बोरी के समान है। परंतु अभी देखिए, अभी भारत में इसको फैशन माना गया है, और यदि उसे बताया जाए कि ये विदेश में भंगी पहनते हैं परंतु यहां पर बंबई में ये एक एक जीन्स पैंट, कई जीन्स पैंट 15,000-20,000 एक जीन्स पैंट, और वो भी कौन सी जीन्स पैंट, ऐसी जीन्स पैंट जिसे पहले वो लटकाते हैं दीवार पर और उसके ऊपर गोली मारते हैं, छेद करते हैं उसके अंदर, उसे अंग्रेजी में कहते हैं बुलेट शॉट पैंट्स, उसके ऊपर छेद करते हैं और वो चारों तरफ जैसे कोई भिखारी जिसे सीने के लिए कोई सुई धागा नहीं, कुछ नहीं, जिसने वैसे कपड़े पहने हैं, वो यहां वहां से फटे हुए। जब पहली बार मैंने देखा व्यक्ति को तो मुझे लगा कि आते समय रास्ते में किधर अटक के फट गया होगा उसका पैंट, परंतु दूसरे दिन में वही पहन के आया वो। तब फिर मुझे बताया कि ये बहुत बड़ा एक फैशन वहां पर है कि कपड़ों को फाड़ कर पहनना, और वो भी इस प्रकार से फाड़ना कि सारे उसके चिथड़े यहां वहां बाहर आए हुए हैं, उस प्रकार से फाड़े हुए कपड़े पहनना, ये वहां फैशन है। फिर ये बड़े बड़े बूट पहनना, वो इसलिए पहनते थे क्योंकि वहां पे इतनी सर्दी है इसलिए वो बूट पहना। अभी बंबई में वो पसीने पसीने हो रहा है, पसीने हो रहा है, लथपथ है पसीने से, वो इतना बड़ा बड़ा बूट पहना है हाथी के पैर के समान, और वो बोरी के समान इतना मोटा जींस पैंट पहना है, और फिर यहां पर वो टाई पहन लिया ये दिखाने के लिए कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा स्टाफ मेंबर हूं कंपनी का, और पसीने पसीने हो रहा है पूरा वो टाई के कारण। तो राधानाथ महाराज उदाहरण दे रहे थे इस टाई का कि उस टाई को देखिए कि वो यहां पर एक गांठ होती है, ग्रंथि होती है वो टाई की, पहले से ही हृदय में इतनी ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि माहौर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, और उसके ऊपर और ग्रंथि बाहर से बांध रहे हैं, और यदि उसको यहां से खींचा जाए उस टाई को तो ये ग्रंथि जो है वो और यहां पर कष्ठा होती है, टाइट होती है। तो महाराज उदाहरण दे रहे थे कि कोई व्यक्ति अपनी टाई को यदि दिखा रहा है दूसरों को कि देखो कितनी अच्छी लंबी टाई है मेरी, तो जैसे वो खींचेगा तो यहां पर ग्रंथि और उसको गले को खींचेगी। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति दिखाता है कि देखो मैं कितना परिश्रम कर ये सब इकट्ठा किया हूं, ये मेरा घर बंगला गाड़ी इतना सब कुछ मैंने इकट्ठा किया, तो वो उसी के समान है कोई व्यक्ति टाई खींच खींच कर दिखा रहा है कि देखो कितनी लंबी टाई है मेरी, परंतु उसके साथ यहां पर क्या हो रहा है, बंधन, वो जो ब है वो बंधन बढ़ रहा है यहां पर उसके गले में। तो व्यक्ति ये नहीं जान रहा कि मेरे कार्यों के वजह से मैं अधिक बंधन में जा रहा हूं। जैसे सुंदर उदाहरण दिया गया है जो मकड़ी का जाल होता है, वो मकड़ी का जाल जब एक कीड़ा उसके ऊपर बैठता है तो कीड़े को लगता है कि ये बहुत आरामदायक, को उसे अंग्रेजी में हैमॉक कहते हैं, हैमॉक, हैमॉक होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा चित्रों में कि पाश्चात्य देश में या कई शहरों में भी भारत में देखने को मिलता है कि ये लोग जब बीच में आनंद करने जाते हैं समुद्र के तट पर, तो वहां दो पेड़ के बीच में वो ऐसे एक जाली जैसा बांध देते हैं और उसमें लेटते हैं और झूले के समान झूलते रहते हैं उसके ऊपर, उसको कहते हैं हैमॉक। तो जो मकड़ी का जाल है उसी प्रकार से दिखता है वो जाली के समान, बिल्कुल वो जो हैमॉक है उसी प्रकार से दिखता है वो मकड़ी का जाल। तो जब कीड़ा उसके ऊपर बैठता है तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा आरामदायक मेरे लिए ये मकड़ी ने बनाकर रखा है, परंतु मकड़ी किस लिए बनाकर रखती है वो जाल, उसे जाल कहते हैं, जाल किस लिए, पकड़ने के लिए। तो जब, और मकड़ी तुरंत नहीं पकड़ती उस कीड़े को, और जब कीड़ा उस जाल पे बैठता है तो पहले उसे अच्छा लगता है, फिर बाद में उसे थोड़ा आभास होता है कि यहां पर तो मैं थोड़ा अटक रहा हूं, यहां निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो फिर थोड़ा प्रयास करता है निकलने का। तो जितना वो प्रयास करता है निकलने का उतना वो और उसमें गूंथता जाता है वो कीड़ा। तो उसी प्रकार से इस संसार में व्यक्ति जितना प्रयास कर रहा है सुख प्राप्त करने का, उतना ज्यादा वो अपना दुख का अकाउंट बढ़ा रहा है, बंधन बढ़ा रहा है। तो परिश्रम फेन और बंधन, और ये सब के कारण फिर भय, फिर है भ, तो भय उत्पन्न होता है। और इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है भयम द्वितीय अभिविनेशतः, कि भय किस लिए उत्पन्न होता है, क्योंकि द्वितीय चेतना होती है। द्वितीय चेतना क्या है, द्वंद्व, हर समय द्वंद्व में रहता है ये मन कि क्या मुझे अच्छा मुझे चाहिए अपने भोग के लिए, और क्या मुझे बुरा दूर करना है अपने जीवन से ताकि वो भोग चलता रहे। भोग त्याग, भोग त्याग, इस द्वंद में हर समय मन रहता है, इसलिए भयभीत रहता है। परंतु जो व्यक्ति इस भय में नहीं है उसे कहते हैं अभय चरणारविंद रे। इसलिए गोविंद दास ने उस सुंदर श्लोक में क्या कहा, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, कि मन में ये अभयता तभी आएगी जब श्री नंद नंदन को ये मन भजेगा। और इसके विषय में मैं सोच रहा था कि देखिए कि भगवान के इतने नाम हैं और इन सब नामों में भगवान का ये जो नाम है नंद नंदन, ये बहुत एक विशेष नाम है। नंद नंदन का अर्थ क्या है, नंद महाराज के जो नंदन है। और नंद महाराज ने अपने जीवन में दिखाया कि किस प्रकार से उनके अंदर ये अभयता थी, ये अभय का गुण था कि इंद्र की पूजा जो हर साल वो किया करते थे, तो कृष्ण ने केवल एक बार, छोटे से 7 वर्षीय कृष्ण बाल गोपाल आकर नंद महाराज से अपने पिता से कह रहे हैं बंद करो। अभी कई बार बड़े बड़े पुत्र भी जब अपने पिता को कुछ कहते हैं तो पिता क्या कहते हैं, अरे तुझे क्या पता, तुझे दूध पिलाकर बड़ा मैंने किया और मुझे सिखा रहा है, मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे लेक्चर दे रहा है। कई बार बंबई में देखते हैं कि जो विद्यार्थी भक्त बन जाते हैं उसके पश्चात जब अपने पिता को जाकर कहते हैं तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो पिता कहते अरे तुम्हें ये शरीर किसने दिया, और अभी इस शरीर से मुझे कहते हो मैं शरीर नहीं हूं, ये लेक्चर और किसी को सुनाना। तो यहां पर देखिए भगवान केवल 7 वर्षीय है, और ऐसा नहीं कि नंद महाराज वो उनको भगवान मार रहे हैं इसलिए मान लिए उनकी बात। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई भगवान कह रहे हैं चाहे 7 वर्ष के हो चाहे 70 वर्ष के हो, भगवान कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा ना। परंतु नंद महाराज वो तो उनको भगवान मानते ही नहीं थे। नंद महाराज, यशोदा माई, सारे ब्रजवासी तो केवल उनको अपना पुत्र बालक मानते थे। तो नंद महाराज ने देखिए तुरंत जब भगवान ने कहा कि इंद्र पूजा बंद करो और इसके बदले पर्वत की पूजा करो, देखिए केवल यदि इतना कहा होता कि इंद्र की पूजा मत करो और यदि ब्रह्मा जी की पूजा करो, जो इंद्र भी मानते हैं कि ब्रह्मा जी मुझसे ऊंचे हैं, या शिव जी की पूजा करो और या विष्णु की पूजा करो तो ठीक है, परंतु एक पर्वत की पूजा करो, तो ये सबसे बड़ा एक थप्पड़ मारा इस वाक्य से भगवान ने इंद्र को। तो नंद महाराज, उनके अंदर देखिए ये गुण कि कितना वो भगवान से प्रेम करते थे कि तुरंत मान, ठीक है कोई भय नहीं कि ये इंद्र क्या कर देंगे। कई बार जब लोग कृष्ण भावना में आते हैं तो कितना भय रहता है कि अभी मैं आपका ये हरे कृष्ण जब शुरू करूंगा तो मैंने जो शिवजी का मंत्र ले रखा है तो शिवजी कुपित तो नहीं हो जाएंगे, उनका कोप तो मेरे ऊपर नहीं आएगा, या ऑल्टर में इतने सारे जो मैंने इतने वर्षों से देवी देवताओं के चित्र लगा रखे हैं यदि इनमें से एक भी चित्र मैं निकालूं तो हो सकता है कि मुझे भी मेरी नौकरी से वो देवता निकाल दें। तो पिछले हफ्ते हम एक दीक्षित भक्त के घर में गए थे कीर्तन के लिए, तो बड़ा ऑल्टर है और अच्छा विग्रह है, सुंदर गौर निताय राधा कृष्ण, परंतु साइड में हमने देखा एकदम कोने में किसी को नहीं दिख रहा, वहां पर वो जो दिवाली का वो एक फोटो आता है सरस्वती लक्ष्मी गणेश का, उसको सब सिंदूर और ये सब लगाकर उसको साइड में रख रखा है। तो वो कैसे तो मुझे दिख गया। हमने पूछा भैया वो वहां पर वो फोटो क्या है, तो वो कह रहे थे कि वो भी भगवान के भक्त ही है ना। उन्होंने कहा कि क्या बहुत सालों से हम लगाते आ रहे हैं उनको सिंदूर और टीका ये सब, तो इसलिए हमने सोचा कि उनको भी साइड में जगह दे देते हैं। क्या है कि वो भी हमारी सहायता करेंगे भक्ति में, परंतु अक्सर मन में कुछ और थोड़ा रहता है, थोड़ा डर लगता है कि जैसे गिरिराज महाराज वो एक घटना बता रहे थे श्रील प्रभुपाद जी के साथ कि एक कोई मंदिर में प्रभुपाद जी को बुलाया गया था। ऐसा ही जैसे कई मंदिर होते हैं जिसमें सब कुछ होते हैं कि आप यदि साईं बाबा ये देवता भगवान विष्णु शिव जी 33 करोड़ देवता के सारे जो प्रतिनिधि हैं सब, मतलब पूरा जैसे वो पाश्चात्य देश में होता है मॉल बोलते हैं उसको, सुपरमार्केट, उसके अंदर जाओ सब कुछ आपको मिलेगा। आपको यदि नहाने का साबुन चाहिए या आपको चलाने के लिए गाड़ी चाहिए, एक टूथब्रश से लेके चलाने की गाड़ी तक सब कुछ मिलेगा वहां पे। तो कई मंदिर वैसे होते हैं, सब कुछ है वहां पे, तो सभी लोग आते रहते हैं। तो ऐसे एक मंदिर में वहां पर जो मेन अर्च विग्रह थे वो किसी देवता के थे, तो उनको फूल दिया गया, प्रभुपाद जी को फूल दिया अर्पित करने के लिए। तो गिरिराज महाराज ने देखा प्रभुपाद जी ने वो फूल लिया और ऐसे फेंक दिया, तो गिरिराज महाराज को लगा कि प्रभुपाद जी ने फूल ऐसे क्यों फेंका, मतलब शिव जी का मंदिर है तो अर्पित तो कर देना चाहिए था, वो भी वैष्णव है, महान वैष्णव है। तो फिर जैसे ही प्रभुपाद जी बाहर गए तो गिरिराज महाराज ऑल्टर के अंदर गए देखने के लिए कि प्रभुपाद जी ने कहां फूल फेंका, तो साइड में एकदम कोने में छोटा सा एक ऐसे ऑल्टर जैसा नहीं था वो, बस दीवार में ऐसा कुछ बनाया हुआ था और अंदर राधा कृष्ण की मूर्तियां थी कोने में। तो प्रभुपाद जी ने वो फूल वहां पर फेंका और वो किसी को नहीं दिख रहा था। कोई यदि ऑल्टर में घुसता, जैसे कई बार दीवार के अंदर देखने को मिलता है कुछ ऐसे मूर्तियां जैसे बनाई होती हैं, तो वो यदि ध्यान से देखो तो दिखने पता लगता है कि क्या है। तो गिरिराज महाराज वो लिखते हैं अपनी किताब में कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी पूर्ण शरणागत थे केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कि वो फूल वहां पर फेंका उन्होंने, उनको अर्पित किया। तो नंद महाराज भी उसी प्रकार से कि ये मेरा जो पुत्र है यदि ये चाहता है कि मैं एक पर्वत की आराधना करूं तो ठीक है, पर्वत की आराधना करते। तो इसीलिए ये जो भगवान श्री कृष्ण है, जो नंद नंदन है, जो नंदन नंद के नंदन है, यदि इनको हम मन में रखेंगे तो किसी प्रकार का भय हमें हमारे अंदर छू भी नहीं पाएगा। अभय चरणारविंद रे, और उनके जो चरण कमल हैं वो हमें पूर्ण प्रकार से अभय प्रदान करेंगे। और यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि किस प्रकार से अब अश्वत्थामा वो भयभीत होकर भाग रहा है, क्योंकि उसके अंदर द्वंद्व है। द्वंद्व यही कि मैंने सही किया कि गलत किया। तो उसी प्रकार से हमारी साधना भक्ति में जब मन में ये द्वंद्व रहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, और जानते हैं कि गलत है। देखिए द्वंद्व तभी आता है जब हम पहचान लेते हैं कि ये सही है ये गलत है। जो व्यक्ति गलत कर, जैसे मृगरारी नारद मुनि से मिलने से पहले उसे मन में कोई द्वंद्व नहीं था, उसे पूर्ण विश्वास था कि वो जो कर रहा था वही सही है। और उसने नारद मुनि से यही कह दिया कि ये तो हमारे खानदान में चला आ रहा है, हमारे खानदान में सभी यही कर रहे थे, और मुझे तो अब तक यही लग रहा था कि ये हमारा खानदानी पेशा है, जानवरों को इस प्रकार से अधमरा कर कर छोड़ देना। तो जब नारद मुनि ने दिखाया कि देखो ये कार्यों के वजह से कहां नरक में जाने वाले हो, वहां पर इतना दंड मिलने वाला है, तो ये गलत है ये सही है, तब फिर द्वंद्व चालू हो गया। और क्योंकि नारद मुनि का संग किया मृगरारी ने, इसलिए वो द्वंद्व तुरंत वो खत्म हो गया, क्योंकि फिर वो सही कार्य में लग गया। तो हमारे जीवन में द्वंद्व क्यों रहता है, जब ज्ञान रहता है कि सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए जो पूर्ण प्रकार से इंद्रिय भोग में रचे पचे हैं उनके अंदर भी ज्यादा द्वंद्व नहीं रहता, क्योंकि उनको भी यही लगता रहता है कि बस ये इंद्रिय भोग ही एकमात्र सुख का साधन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर भी कोई द्वंद्व नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि कृष्ण प्रेम ही एकमात्र सुख का साधन है। हमारी स्थिति क्या है, हम बीच में अटके हुए हैं त्रिशंकु की तरह, न तो पूर्ण प्रकार से कृष्ण प्रेम में हमें इतना विश्वास है, और यहां पर भी इंद्रिय भोग में थोड़ा थोड़ा विश्वास उठता जा रहा है, परंतु थोड़ा विश्वास है, लगता है कि पूर्ण प्रकार से इंद्रिय भोग गलत नहीं हो सकता। वो ठीक है कि इंद्रिय भोग में कुछ सुख नहीं है, परंतु कुछ इंद्रियां मुझे सुख देती हैं। और यदि ये भी इंद्रियां मुझे आगे चलकर दुख दें, परंतु अभी तो सुख दे रही है कि नहीं। तो क्योंकि हम पूर्ण प्रकार से अपने आप को इंद्रिय भोग से बाहर नहीं निकाले हैं, और पूर्ण प्रकार से कृष्ण भावना में नहीं डाले हैं, इसलिए बीच में अटकने के कारण ये द्वंद्व रहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, परंतु कैसे मैं इस गलत कार्य से बाहर आऊं। और वो जो दृढ़ निश्चय है वही साधना भक्ति है, कि साधना भक्ति में ये जान लेना कि मैं केवल सही कार्य करूंगा जो भगवान चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे जो देवता होते हैं वो भी भगवान के भक्त ही कहे गए हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि वो मिश्रित भक्त हैं, अंदर उनके अंदर मिश्रण है भक्ति का और भोग का दोनों का, तो कर्म मिश्रित भक्त कहा जाता है। तो वो जानते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठतर है, परंतु अपना भोग छोड़ नहीं पाते, इसलिए अपना भोग करते करते भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो कई बार हमारे अंदर भी उस प्रकार की धारणा आ जाती है कि भोग करते करते मैं भगवान की भक्ति वो भी कर सकता हूं, भोग करते करते भी कर सकता हूं भगवान की भक्ति, परंतु वो उस प्रकार से है कि जैसे हम अग्नि जला रहे हैं और एक तरफ से उसके अंदर पानी भी फेंक रहे हैं, तो एक तरफ से अग्नि जला रहे हैं दूसरी तरफ से पानी डाल रहे हैं, तो अग्नि थोड़ी बहुत जलती रहेगी, परंतु पानी डालने के वजह से वो अग्नि किस प्रकार से जलती रहेगी, वो अग्नि में धुआं वो थोड़ा उत्पन्न होता रहेगा, और धुआं से खांसी, आंख में पानी, तकलीफ और ज्यादा होगी, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से देखा जाता है कि साधना भक्ति में जब हम उस स्तर पर रहते हैं, भोग भी चाहिए कृष्ण भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो संडे को थोड़ा कृष्ण और बाद में मंडे से फिर थोड़ा भोग शुरू होना चाहिए अपना, या फिर दिन में सुबह का समय थोड़ा कृष्ण के लिए, परंतु उसके बाद तो क्या है कि दिन में परिवार को चलाने के लिए, स्वयं को चलाने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसलिए फिर इसमें हम लगा लेते हैं कि ये भी भक्ति का कार्य है। हालांकि वो व्यवक्तिक वास्तविक रूप में जो यदि भक्त उस चेतना में रहे तो भक्ति का कार्य है, परंतु चेतना है कि नहीं हमारी वो देखना चाहिए कि मैं कितना आवश्यक है भगवान के लिए उतना ही परिश्रम करूं इस संसार में, उससे अधिक जो हो जाता है वो मेरे भोग के लिए। जितना आवश्यक है यदि उतना ही मैं परिश्रम करूं तो वो मेरे जीवन यापन के लिए अर्थात भगवान के लिए। तो इसलिए ये जो द्वंद्व है ग्यारहवें स्कंध में बताया गया है भयम द्वितीय, ये द्वंद्व से जब मुक्त होंगे तब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर आएंगे और तभी हम भगवान के चरणारविंद की शरण ग्रहण करेंगे पूर्ण अभयता से। और जब शरण ग्रहण करेंगे तो वो चरणारविंद भगवान के हमें अभय प्रदान करेंगे और वो प्राप्त करने के लिए हमको शरण सबसे पहले ग्रहण करनी है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इसलिए उनका नाम भी अभय चरणारविंद है। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।
रुद्रेश शिक्षा की।